जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सरो सामान है। हाईलाइट कर ले, फमाउती तुम इन शईन फमताउल हयात दुनिया, जबकि वह माइंदल्लाही खैरुं व अबका, जो कुछ अल्लाह के हाँ है वो बेहतर भी है और पायदार भी है। क्या चाहिए आपको मुझे, जल्दी टूटने वाली चीजें या मजबूत चीजें? कौन सा फर्नीचर अच्छा होता है? मजबूत। कौन से कपड़े अच्छे होते हैं, खराब होने वाले, जल्दी से रंग उड़ने वाले या? तो अल्लाह ने ये मैसेज दे दिया, ये दुनिया जल्दी खराब होने वाली, इसका रंग जल्दी उड़ जाता है, टूट फूट जाती है। आखिरत की चीजें ड्यूरेबल, दो लफ्ज यहां नोट कर सकते हैं आप, खैर और अब का, क्वालिटी भी अच्छी है और उनकी खूबसूरती भी ज्यादा है। दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, यानी महंगी बहुत होती हैं लेकिन ड्यूरेबल नहीं होती। मसलन प्योर सिल्क का जोड़ा खूबसूरत बहुत है, नरम बहुत है, लेकिन धोएंगे तो वो कचरा, बड़ी एहतियात से पहनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरी सूरत है कि चीज है प्योर कॉटन की, खूबसूरत और पहनने में तो बहुत मजे की भी बहुत है, बहुत देर चलती है, खराब भी नहीं होती। आखिरत की चीजों में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं, खूबसूरती और ड्यूरेबिलिटी उन दोनों के एक साथ है। किसको मिलेगी? लिल्लज़ीना आमनू वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं। दो खूबियां, अब आगे लिस्ट बनाइए, ये बड़ी अहम आयतें हैं सूरत शुरा की। और वो कैसे? वल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइरल इस्मी, और वो लोग जो बड़े बड़े गुनाहों से इज्तनाब करते हैं और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं। और अगर कभी गुस्सा आ जाए, कभी कभी आता है, हर वक्त नहीं गुस्से के अंदर भड़े रहते, तो दरगुजर करते हैं और जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं और अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं, और हमने जो कुछ भी रिस्क इनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, और जब इन पर ज्यादती की जाती है तो इसका मुकाबला करते हैं, और बुराई का जवाब यानी बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे तो इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। कोई गिन रहा था कितनी खूबियों का तस्करा? इन आयात में एक पूरी चेकलिस्ट है जिसका आगाज हुआ, देख लीजिए दोबारा अगर आपने नहीं देखा, आमनु, फिर यतवक्कलून, फिर यजतनिबून कबायर अल इस्मी वल फवाहिश। अब इस सारी चीजों का बाद में जाके नंबरिंग दे लें तो आपको एक आइडियल मुस्लिम का तसव्वुर मिलेगा कि जो फुहश में नहीं पड़ता, कबायर में नहीं पड़ता। चले ईमान और तवक्कुल की बात तो सारे ही मानते हैं, लेकिन कबायर के साथ क्या मामला है? हज़रत सुबान से एक रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग तहामा पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएंगे। तहामा पहाड़ बहुत ऊंचा, सफेद नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह उनको गुबार बनाकर उड़ा देगा। यानी नेकियां थी, इखलास भी था, कुरियाकारी भी नहीं थी, सुन्नत के मुताबिक भी थी, लेकिन जब उनके सामने लाया जाएगा ना तो अल्लाह ताला कहेंगे, फरिश्तों जाओ इसको वेस्ट कर दो, और ऐसे हबा मंसूरा बना के उड़ा दिया जाएगा। पूछा अल्लाह के नबी, ये कौन से लोग हैं कि नेकियां तो उनकी अपने हिसाब से बहुत अच्छी थी लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं की? फरमाया, ये वो लोग हैं कि रात की तन्हाइयों में जब इनको हराम कामों का मौका मिलता तो उससे नहीं झुकते थे। अडल्ट ओनली, बस हस्बैंड वाइफ ही तो देखते हैं, और ये तो बस हमारी पर्सनल लाइफ है, आंखों से या कानों से या जिस्म के किसी उज्व से कोई ऐसी हराम चीज इस्तेमाल कर ली तो अल्लाह को आपकी तहज्जुदें, आपकी तरावियां और आपके उम्रे और आपकी इफ्तारियां कबूल करना पसंद नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को अलग रखें। और ये बड़ा एक गुमान है कि जी हस्बैंड वाइफ ही तो हैं, हस्बैंड वाइफ भी गलत चीज नहीं देख सकते। और जब तक फहाशी के खिलाफ हम खड़े नहीं होंगे ना, दुनिया में इस्लाम नहीं आएगा। बड़े बिलबोर्ड्स आप इनको देखिए, सोचें क्यों करते हैं। बाज लोग आप देखिए इतने गंदे इश्तेहार लगाते हैं, जाके वजह देखिए, शायद बेल में तो जाकर आप उनको नसीहत करें। और उन कंपनीज वालों से बात करें जो औरत को बेचते हैं, ऐसे लगता है औरत बिक रही है, बाद में पता चलता है कोई कपड़ा बिक रहा है, बाद में पता चलता है यहाँ हया बिक रही है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए फ़ख्र से मैं माफ़ करें। फिर दूसरी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको तो नहीं लूँगी, और वो क्या है, अमरुहुम शूरा बैना, उम्मत मुस्लिमा के काम मशवरे से होते हैं। उम्मत मुस्लिमा का एक अपना निज़ाम है। आज बहुत सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस भी जिस सेटअप पे चलती हैं ना, वो दुरुस्त नहीं है। चंद जुमलों में सिर्फ आपको इस्लाम का मिजाज समझा देती हूँ दौरे खिलाफत से। नबी सल्लम का तरीका कर क्या था? आपने फरमाया कि जब कोई कुरान ज़्यादा पढ़ा हो ना, तो वो जमात कराए। इमामत, इमामत को समझ लेंगे तो सारी कहानी दीनी दुनियावी सब समझ आ जाएगी। सबसे ज्यादा जिसको कुरान पता होता ना, आप उसकी बात करते हैं। आपके हत्ता के पता है कि जब गजवे उहद में 70 सहाबा शहीद हुए तो उनको दफनाया जा रहा था, बाज दफा एक ही कब्र में कई लोग डाले गए, तो किस तरतीब से उनको दफनाया गया? जो जितना कुरान ज्यादा जानता था, हाफिजों को पहले दफनाया गया, इज्जत दी गई, ऑनर दी गई। इसी तरह सहाबुल बकरा, आपने उन लोगों को कहा जिनको सूरत बकरा आती थी। इस्लाम का मिजाज क्या है? आप अपने लोगों में से द बेस्ट शख्स को चूज करें, जिसके अंदर दूसरों से ज्यादा खूबियां, उसको लीडर बना लें, जिसको आप खलीफा कह लें या कुछ भी कह लें। उसके बाद उसके इर्द गिर्द कौन लोग हों जो तकवा इल ईमान में दूसरों से अच्छे हों। आपने फरमाया कि इमाम जब आगे नमाज पढ़ाता है ना, तो उसके पीछे जो पहली सफ में लोग हैं ना, वो इल्म वाले हों। क्यों? अगर इमाम का वजू टूट जाए तो उनमें से किसी को आगे कर दिया जाए ताकि वो नमाज पढ़ाए और दूसरे उधर हो जाए। अगर खुदा नास्ते इमाम को कुछ हो ही जाए तो जमात ना टूटे। ये इस्लाम का मिजाज था, लीडर जो इल्म और ईमान और तकवा में सबसे आगे हो। दुआ कीजिए अल्लाह हमें ऐसे लीडर्स दे दे। उनके साथ वो लोग जो कुरान पढ़े हुए हों, जिनकी सोच एक डिवेलप हो चुकी हो, वो उनके पास एक शूरा की सूरत में होंगे। जिनका अपना दिल अल्लाह से जुड़ा होगा, वो मशवरे भी देंगे तो ठीक देंगे। जो खुद कुरान से गुजरे होते हैं, उनको ही कुरान की कुर्बानियां देनी लेनी आती हैं। नतीजा क्या होगा? बन गई एक जमात। अब क्या होगा? हमारे यहाँ कहते हैं मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जिसको आप डेमोक्रेसी कहें, इस्लाम उसके लिए ये करता है। एक आलिम का वोट और एक देहाती का वोट एक बराबर है, कैसे दुनिया में अमन आएगा? ख्वाहिश परस्त शराबी कबाबी और एक बहुत डिसेंट नोबल जेंटलमैन, दोनों एक ही जगह वोट डाल के आते हैं, दुनिया में फिर ये होगा जो आज हो रहा है। इस्लाम क्या कहता है? चुनो द बेस्ट को। नबी सल्लम के पास द बेस्ट अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली, और उसके बाद लोगों ने एक लीडर चुना। एक जुमला बोलूंगी जो आपके लिए नया होगा। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में निज़ाम क्या है, आपको इस मुल्क का पता होगा, मुझे भूल गया, कि सदर कितने साल के लिए चूज होते हैं? 4 साल। वजीर आजम का भी कोई क्राइटेरियन है? रूल्स है ना कि कौन कब हो सकता है, कौन नहीं बन सकता। लेकिन ये तो फैक्ट है, चाहे मुल्की सतह से शुरू करें या ऑर्गेनाइजेशनल बेस पे, कि आप इसके बाद आप रिटायर होने वाले। इस्लाम में रिटायरमेंट का तसव्वुर ही नहीं है। जिस दिन दुनिया को आप इस्लाम देंगे ना, आप मरते दम तक अपनी कुर्सी पे होंगे। क्यों? अबू बकर कब हटे? जब अबू बकर का इंतकाल हुआ, उमर आए, उमर खलीफा बने अपने आखिरी दिन तक, उमर गए तो उस्मान आए, उस्मान गए तो अली आए। इस्लाम क्या कहते हैं कि लोगों की स्किल्स इतनी जब बढ़ चुकी हों कि वो तो कुंदन बन गए, तो अब तो उनसे फायदा उठाओ। आज का सिस्टम कहता है अब उनको, सॉरी हमारी टर्म पूरी होगी, वी नीड टू चेंज आवर बोर्ड मेंबर्स, बिग क्रॉस। इसलिए काम नहीं होते, एक्सपर्टीज नहीं तैयार हो रहे। तो बहरहाल ये एक इशारा था आपके लिए, बाकी काम आप डिटेल से बाद में खुद पढ़ लें और सुन लें। इस वक्त इस पूरे सेटअप को बदलने की जरूरत है, दीनी कामों में भी और दुनियावी कामों में भी, सियासी लीडरों को, और इसी तरह हर प्लेटफॉर्म पे। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक आइडियल सोसाइटी बनेगी, और अल्लाह हमें ऐसी ही सोसाइटी बनने वाला बनाए कि जहां ये सारी खूबियां जिसका जिक्र हमने पढ़ लिया। फरमाए वलमन इंतसर बाद जुल्मिहि फाउलाए कमा अलैहिम मिन सबील انما السبيل على الذين يسلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق فرمایا اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو لازمی کے کاموں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق دے۔ وَمَنْ يُطْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ، جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے پھر اس کو تو کوئی سنبھالنے والا نہیں اللہ کے سوا، تم دیکھو کہ یہ ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے، اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل زیاں کار تو وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا، خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں، اور جسے اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے آپ شاید اس آیتوں کو سن کر کچھ فیل کر رہے ہیں کہ نہیں، میری تو نظریں صرف اسی جملے پہ اٹکی ہوئی ہیں کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ۔ 3 سیکنڈ تک ذرا آپ اس آیت پہ غور تو فرمائیے اور خود سے پوچھئے، کیا میں وہ بیوی تو نہیں ہوں جس نے اپنے شوہر کو خسارے میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اس کو حرام پہ مائل کر کے، غلط چیزوں کے تقاضے کر کے میں نے اس اللہ کے بندے کو مشکل میں تو نہیں ڈالا ہوا، اور پھر اپنے آپ کو شوہر سمجھتے ہوئے شوہر بھی پوچھ لیں کیا میں وہ شوہر تو نہیں جو اپنی بیوی کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کیے ہوا ہوں، اس کو بے حیا کر کے اور اس کو بے لباس کر کے، اور کیا میں ایسی ماں اور ایسا باپ تو نہیں ہوں جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ کو اپنا یقین ہوگا نا کہ میں اپنے ساتھ دوسروں کی بھی خیر چاہتی ہوں تو آپ کبھی بھی اپنے ارد گرد والوں کو غلط کام پہ مجبور نہیں کریں گے، اور یہ بہت خسارے کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت قیامت کے دن 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کو، مطلب یہ کہ مختلف روپ میں اس عورت نے اگر اپنے مرد کو دین پہ عمل کرنے اور اس کو اس کے دین پہ تنقید کرنے کا حق نہیں دیا اور مماری کی اپنی مرضی کی زندگی، تو وہ عورت اس مرد کو بھی جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، مان لو اپنے رب کی بات، کیا ارادہ ہے، خود سے پوچھے، اللہ کہہ رہا ہے مان لو، پلیز ایکسیپٹ دس انویٹیشن، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا کوئی اور ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، انسان کا حال یہ کہ جب ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر بھول جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ فیملی پلاننگ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، آپ اپنے بہن بھائیوں میں سوچئے، بہنوں کی اولاد بھی فرق ہوتی ہے نا، کسی کی صرف بیٹی ہیں، کسی کے صرف بیٹے ہیں، کسی کو اللہ نے ماشاءاللہ دونوں چیزیں دی ہوتی ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیا ہوتا۔ ہماری ایک سسٹر تھی تو وہ کہتی تھی کہ جب یہ آیت میرے ابا پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ آیت اللہ نے میرے بارے میں نازل کی، کیسے کہتی تھی، ہم میں سے ایک بہن بھائیوں میں، جو بھی 3-4 بہن بھائی تھے، ایک کی صرف بیٹیاں تھیں، ایک کے صرف بیٹے تھے، تیسرے کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھے اور چوتھے بے اولاد تھے۔ تو اللہ کی شان ہے، اولاد آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، इसलिए कभी बीवियों को ताना न दें वो मर्द कि ये औलाद पैदा नहीं कर सकती, अब इनको बेकार समझ के अलग कर दो। आप तो उसकी शादी कर लें, आपका दिल करता है, आपके नसीब में अल्लाह आपको दे देगा। और ऐसी बीवियों को एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी आने वाली आपका हक नहीं लेगी, जिसको नहीं मिलता उसको अकेली बीवी होते हुए भी नहीं मिलता, और जिसको मिलता उसको दूसरी बन के भी मिल जाएगा। इसी तरह ऐसी सासें ताने ना दें अपनी बहुओं को कि ये औलाद पैदा नहीं कर रही तो पता नहीं क्या है। एक्सेप्ट इट। क्या हम में से हर एक हर काम करता है, हर एक काम करने के काबिल है? नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह ने आपकी मेरी बांट जो बनाई इस पे रहिए, जो दिया है उसकी फिक्र करें, जो नहीं दिया उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला तूने मुझे जिम्मेदारी से आजाद किया, तू मुझसे कोई और खिदमत ले ले। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को औलाद ना होने पर सब्र क्यों नहीं आता, इसके पीछे एक पूरा माइंड सेटअप है। हम सोचते हैं औलाद हो, क्यों हो? बुढ़ापे का सहारा, पानी पिलाएंगे बूढ़ों को, हमें टेक केयर करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, जब आप ये सोचेंगे तो फिर आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए ना। अब आपको रोना आएगा, हाय दिन ब दिन बुढ़ापा आ रहा है, हाय अकेली, हाय बच्चों को देखें, खुशियां देखें, दिल चाहता है, फितरी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहते हैं हाँ बच्चों को देखें, खिलाएं पिलाएं, अब आप इसको एक तरफ कर दीजिए, ये फितरी चीजें थी, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन इसके बरक्स आप सोचते हैं कि औलाद हो, क्यों हो? ताकि मैं उनकी अच्छी तरबियत करूं, ठीक है ना? वो मेरा सदका जारिया बने, दूसरी वजह लिख लें। तीसरी चीज आप कहते हैं उम्मत मुस्लिमा ग्रो करें, जो भी चार छह चीजें हैं। अब अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी, आप अच्छी तरबियत करना चाहते हैं ना, तो आप दूसरों की बच्चों की तरबियत का काम ले लें, आप बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके सदका जारिया बने, तो आप बच्चों की फरागत को दूसरे कामों के करने और अपने लिए सदका जारिया बनाने का जरिया बना लें। फिर बात वही इज्तमाईयत की, जात को सोचेंगे तो रोएंगे, और उम्मत का फर्द बन के सोचेंगे, प्यार करना है ना अपने बच्चे को, जाइए किसी के भी कर लें। हाँ, पैंपर बदलने का शौक है अपने बच्चों के, किसी और के बदलें। चल, अच्छे कपड़ों का शौक आता है ना बच्चों को पहना, आप जाइए अपने किसी दोस्त के बच्चे को अच्छे से कपड़े खरीद के दे दें। बात समझ रहे जो मैं समझाना चाहती हूँ? बिग हार्ट। जब आप उम्मत मुस्लिमा का फर्द बनते हैं ना, आपका दिल बड़ा हो जाता है, आप कहते मेरा नहीं तो किसी का, सही है ये अल्लाह का तोहफा, और सारे एक ही जैसे होते हैं, चुलबुले से गुपले से। आप अपने बच्चे को प्यार कर दें, आप किसी और के बच्चे को प्यार कर लें। सच्ची बात है, एक ही बंदा दुनिया में खुश है जो अल्लाह की रजा पे राजी है। राजी रहना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह भी आपसे राजी रहेगा। इसीलिए आगे अब इंसान का मुकाम बताया गया, वही के जो मुख्तलिफ तरीके नबी सल्लम पर नजूल के थे, वो इन आयात में इशारतन जिक्र है। वमा काना ली बशर ने युकल्लिमहुल्लाह, किसी बशर का ये मुकाम नहीं कि अल्लाह इससे रूबरू बात करे। इसकी बात वही यानी इशारे के तौर पर होती है, या पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई पैगंबर फरिश्ता भेजता है और वह इसके हुक्म से जो कुछ चाहता है वही करता है, वह बरतर और हकीम है। इसी तरह नबी, हमने अपने हुक्म से एक रूह आपकी तरह वही की, आपको तो कुछ पता भी ना था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर इस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया जिससे हम राह दिखाते हैं अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। यकीनन आप सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो। सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द, उस अल्लाह के रास्ते की तरफ जो जमीन और आसमान की हर चीज का मालिक है। अला इल्लाही तसीरुल उमूर, खबरदार रहो, सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह के नबी को बता दिया, आपको नबूवत से पहले तो कभी अंदाजा भी नहीं था कि आपको अल्लाह ताला कल क्या देने वाला है। मैं जब भी शायद पे आती तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला हमने कब सोचा था कि हमें किताब मिलेगी। आप अपने आप पर लेकर सोचे, जिनको अल्लाह ने किताब से जोड़ा हुआ है, कभी आपने अपने बचपन में ये ख्वाब देखे थे कि आप कुरान तफसीर से पढ़ेंगी? फैज, आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा था ना। शाहीन, आपने कभी सोचा था? सबा, आपने कभी सोचा था? आपने सोचा था जो जो भी कुरान से जुड़े हुए हैं, और आप ये जो भागते रहते हैं दिन रात अल्लाह के हुक्म से दीन के कामों में, कितने लोगों ने बचपन में ये ख्वाब देखा था, और हमें तो अफसोस है ये ख्वाब दिखाया भी नहीं गया कि तुम अल्लाह के दीन के लिए भागो दौड़ो। कभी सोचा था? ये किसने दिया? ये अल्लाह ने दिया। और अल्लाह इस तरह से इंसान को नेकियों के मौके देता है कि जब इंसान उसको अवेल कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला फिर उसकी दुनिया भी खूबसूरत कर देता है। जिन चीजों पे लोगों को रहम आ रहा होता है ना, वल्लाही तरस खाते हैं लोग। उसमें आपको मजा आ रहा होता है और आपको उसमें एनर्जी मिल रही होती है। लोग एक काम करके थक जाते हैं, आप दो करके भी नहीं थकते, तीन करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं थकेंगे, चार करेंगे तो और भी नहीं थकेंगे। और फिर वही बात है, कोई काम कभी कभी करना मुश्किल होता है, रोज करना आसान होता है। तो सूरत शूरा बहुत ही एनरिच सूरा थी, बहुत ज्यादा वक्त लिया इसने, लेकिन मुझे लगता है कि इसका हक था कि हम इसको ये वक्त देते। उम्मत बन के जीना है ना, उम्मत वसत हो और सूरत शूरा पे बात ना करे और फिरका वारियत की बात ना करे और वो लंबी चेकलिस्ट के जिसमें लोगों को माफ करने की बात, जिसमें बदले लेने की बात, जिसमें मामले मशवरे के साथ करने की बात है, तो ये उम्मत आज डेवलप करनी है। कोई आपसे पूछे ना व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ रियल उम्मा, तो आप ये आयत की तफसीर 37 से अगली इसकी लिस्ट पूरे आराम से दे दें। और ये किरदार कब बनेगा? जब लोग कुरान से जुड़ेंगे, बातों से नहीं बात बनती। अल्लाह ताला हमें इसका हक अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह से दुआ कीजिए आज उम्मत मुस्लिमा जो इतनी प्यारी उम्मत है, अल्लाह उनको इन खूबियों से मुत्तसिफ कर दे।